राजवंशी हाउस का गलियारा इस वक्त असहज खामोशी में लिपटा हुआ था। बाहर धूप ढलने को थी और अंदर दीवारें जैसे कुछ सुनने को तैयार बैठी थीं। ड्राइंग रूम में अखिल की माँ अभी भी उसी सोफे पर बैठी थी। आंखें अब खुली थीं, लेकिन ध्यान कहीं और उलझा हुआ। सामने की टेबल पर चाय का प्याला आधा खाली था और उस प्याले की तरह ही शायद उनका मन भी आधा रह गया था। तभी माँ, आवाज़ हल्की थी लेकिन तीखी, दूसरे कमरे से आई थी। अन्या, करीने से बांधा गया बन, सिल्क की मोम जैसी शर्ट और डेनिम, लेकिन आंखों में बगावत की हल्की सी झलक। वो सीधा माँ के पास आई, सामने बैठी। माँ, आपको वो ज़रूरी बात करनी थी मुझसे? अखिल की माँ ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, तुम्हारी सगाई जिस लड़के से हुई है उसका फ़ोन आया था। कह रहा था तुम उसके कॉल नहीं उठा रही हो, मैसेज का जवाब नहीं दे रही। अन्या की भौहें तन गईं। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ, नहीं उठाती, क्योंकि कहने को तो वो मेरी मंगेतर है, लेकिन पसंद आपकी है, तो फिर आप ही बनाइए ना उससे बात भी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अखिल की माँ के चेहरे पर कुछ पल के लिए स्तब्धता आई, फिर आंखों में वो पुराना तेज लौटा जो अक्सर सिर्फ गुस्से के साथ आता है। अम्या, उनकी आवाज़ कांपी, तमीज़ में रहो, ये घर तुम्हारे ड्रामा की जगह नहीं है। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और वो लड़का एकदम उपयुक्त है। अच्छा परिवार, स्टेटस, पढ़ा लिखा और तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें क्या चाहिए? अन्या की आंखों में अब ठंडी आग थी। वो बोली, माँ, क्या आपने कभी मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए, या हमेशा यही समझा कि जो आपने सोच लिया वही सही है? अखिल की माँ उठ खड़ी हुई, उनकी हथेली हवा में उठी। एक क्षण को मानो थप्पड़ की दूरी तय हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका। हाथ धीरे धीरे नीचे आया। अन्या की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। वो सिर्फ शांत हो गई, जैसे कोई बांध टूटने से पहले का मौन हो। मैं अब भी बच्ची नहीं हूं माँ, और किसी अजनबी से शादी करना मेरी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो आपके मापदंडों पर खरा उतरता है। अखिल की माँ अब खामोश थी। उनके चेहरे पर घुटी हुई हार की झलक थी, लेकिन जुबान अब चुप थी। अन्या पीछे मुड़ी, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। स्थान, अन्या का कमरा। समय शाम के 5:30 बजे। कमरा एकदम करीने से सजा था। बुकशेल्फ पर आत्ममंथन से भरी किताबें, एक कोने में क्ले म्यूजिक लैंप और ड्रेसिंग टेबल पर अब भी रखे हुए मंगेतर द्वारा भेजे गए चॉकलेट्स। लेकिन इस वक्त अन्या ने सब कुछ अनदेखा कर दिया। वो अपनी अलमारी के अंदर के एक खुफिया पॉकेट से एक छोटा बैग निकाली, चमड़े का, थोड़ा पुराना और भारी। जिप खोली, अंदर से एक छोटी शीशी निकली। तरल रंग का था, गुलाबी और नीला मिश्रित। लिक्विड एक्स, एक तरह का हाई एंड डिजाइनर ड्रग जो उसके कॉलेज के दिनों से ही उसकी कमजोरी था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे नशा चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वो उसे उस दुनिया से काट देता था जहां उसके लिए फैसले लिए जाते थे। अन्या ने शीशी को देखा जैसे कोई अपना पुराना साथी देखे। शादी? उसके होठों से निकला जैसे खुद से सवाल किया हो। मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, नहीं करूंगी। उसने बोतल की कैप खोली, एक तेज गंध उसके नाक में गई। वो बेड पर बैठी और कुछ बूंदें अपनी हथेली पर गिराईं, फिर धीरे धीरे पी गई। उसका शरीर हल्का कांपा, आंखें पल भर के लिए बंद हुईं, और अगले ही पल वो खुद से बुदबुदाई, मुझे इसे रोकना होगा, हर हाल में, ये शादी, ये रिश्ता, ये मुखौटा, सब। अचानक उसकी आंखें लाल हुईं, सिर्फ नशे की वजह से नहीं, बल्कि उस छटपटाहट से जो अपनी पहचान को खोने के डर से उठती है। अन्या अब अपने कमरे में अकेली थी। बाहर का घर अब शांत था। माँ शायद पूजा में बैठी थी या किसी और तनाव में उलझी हुई, लेकिन अन्या ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था। उसके इरादे अब एक नई दिशा ले चुके थे। वो जानती थी, अगर इस शादी को नहीं रोका तो मेरी जिंदगी मेरी नहीं रहेगी। और उस रात धूल ने एक बार फिर सिंदूर की जगह ले ली थी।